नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष में 5.5% की वृद्धि, रिकॉर्ड 821 अरब डॉलर के आसपास पहुंचा। अमेरिका ने बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच चीन के उत्पादों पर 245% जवाबी शुल्क लगाया। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में भूमि सौदे से जुड़े मामले में लगातार दूसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम नई दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। भारत के वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वित्त वर्ष में 778.13 अरब डॉलर की तुलना में रिकॉर्ड 820.93 अरब डॉलर तक पहुंच गई। एक रिपोर्ट।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार देश का कुल निर्यात 820.93 अरब डॉलर होने का, जबकि कुल आयात 915.19 अरब डॉलर होने का अनुमान है। आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष मार्च में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 21.54 अरब डॉलर हो गया था। इस महीने के दौरान व्यापारिक निर्यात 0.7% बढ़कर 41.97 अरब डॉलर हो गया। इस बीच मार्च में व्यापारिक आयात 11.3% बढ़कर 63.51 अरब डॉलर हो गया है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
अमेरिका ने चीन से आयात होने वाली वस्तुओं पर 245% तक के नए जवाबी शुल्कों की घोषणा की है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार संघर्ष तेजी से बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित है। बयान में चीन द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख है। चीन द्वारा भारी दुर्लभ धातुओं और चुंबक सहित महत्वपूर्ण उच्च तकनीक पदार्थों का निर्यात प्रतिबंधित किए जाने के फैसले से अमेरिका के ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर और रक्षा जैसे क्षेत्रों पर असर पड़ेगा। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि शुल्क युद्ध अमरीका ने शुरू किया है। भारत और अमरीका इस सप्ताह द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा करेंगे। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले हिस्से की संदर्भ शर्तों पर कल हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में वाणिज्य उद्योग सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि दोनों देशों ने परस्पर लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
इस समझौते का लक्ष्य 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देना है। श्री बर्थवाल ने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए मौजूदा शुल्क के मद्देनजर भारत के लिए चिंताएं और अवसर दोनों पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार उदारीकरण का मार्ग अपनाया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के लिए बहुत से अवसर सृजित होंगे। श्री बर्थवाल ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में अमेरिका के साथ भारत का व्यापार बढ़कर 500 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
इस बीच खाद्य कीमतों में उल्लेखनीय कमी के कारण पिछले महीने भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति दर घटकर 3.34% पर आ गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि अगस्त 2019 के बाद साल दर साल आधार पर यह सबसे कम मुद्रा स्फीति दर है। प्रवर्तन निदेशालय हरियाणा में एक भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ कर रहा है। उनसे नई दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। मामला श्री वाड्रा की कंपनी द्वारा गुरुग्राम में एक भूमि की खरीद से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय को धमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका।
कानून अपना काम कर रहा है, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए?
नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कानून को अपना काम करने देगी और कानून काम करेगा।
इस बीच कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही को बदले की राजनीति बताया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुराना समूह और साई सूर्या डेवलपर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद में कई स्थानों पर छापेमारी की है। निदेशालय हैदराबाद और सिकंदराबाद में जुबली हिल्स और बोवेनपल्ली इलाकों में दोनों समूहों की संपत्तियों की तलाशी ले रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हैदराबाद के वेंगल राव नगर में स्थित एक प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी साई सूर्या डेवलपर्स के मालिक के सतीश चंद्र गुप्ता पर ग्रीन मेडोज वेंचर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राठकर ने नेतृत्व में 4 सदस्यीय समिति मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी और स्थानीय पीड़ितों तथा उनके परिवारों से बातचीत करेगी। आयोग ने मुर्शिदाबाद जिले के मंदिरापारा इलाके में सांप्रदायिक अशांति के दौरान कई महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की खबरों का स्वतः संज्ञान लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
बच्चा हो रहा है बड़ा, 6 महीने होने को आए, मन में हैं कई प्रश्न, तो आज हमसे सुनिए उपाय। जन्म के 6 माह बाद बच्चे को हल्का भोजन खिलाएं, पोषण का ध्यान रखकर भविष्य को मजबूत बनाएं। अंडा हो या मांस मछली, पसंद का ले साथ, पीस कर खिलाएं सब्जियां तो बन जाएगी बात। स्तनपान भी रहेगा जारी, मन में कोई शंका न लाएं, कोई समस्या लगे तो नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाएं। स्वस्थ रहेगा तन तो मजबूत होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
ये आकाशवाणी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। इन दोनों पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम था। कोंडागांव और नारायणपुर जिलों की सीमा पर किलम बरगुम गांवों के जंगल में मुठभेड़ कल शाम उस समय हुई जब जिला रिजर्व गार्ड की एक टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी ने बताया कि घटनास्थल से दोनों माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं।
अभियान के दौरान 15 अप्रैल को शाम से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके के सर्चिंग में 2 माओवादियों का डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी। दोनों माओवादियों का शिनाख्त डिविजन कमेटी मेंबर हल्दर एवं एरिया कमेटी मेंबर रामे के रूप में हुआ। हल्दर के ऊपर 8 लाख इनाम एवं रामे के ऊपर 5 लाख इनाम पूर्व से घोषित है। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 एवं अन्य आर्म्स एमुनिशन भी बरामद की गई।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में हथियार और गोला बारूद से जुड़े आतंकी साजिश मामले में एक पाकिस्तानी हैंडलर समेत 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। एक रिपोर्ट।
जम्मू में एक विशेष NIA अदालत के समक्ष कल आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसमें अब्दुल अजीज मुनव्वर हुसैन और नजीर हुसैन उर्फ अली खान को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के अलावा BNS 2023 की धारा 61(2) के तहत आरोपित किया गया है। प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स आतंकवादी संगठन का कार्यकर्ता नजीर हुसैन वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सक्रिय है। NIA जांच के अनुसार नजीर कश्मीर के कमजोर लोगों को हिंसक गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रेरित करने में शामिल था। आरोपित आतंकवादियों का उद्देश्य क्षेत्र के सांप्रदायिक सद्भाव और शांति को बाधित करना था। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
न्यायाधीश अरुण पल्ली ने आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायपालिका और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। भारत ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम पर पाकिस्तान की निराधार टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वक्फ विधेयक पर पाकिस्तान की टिप्पणियों के बारे में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। भारत और G4 के अन्य देशों ब्राजील, जर्मनी और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में धर्म के आधार पर सीटें आवंटित करने के प्रस्तावों का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पाथवाना नेनी हरीश ने कहा कि परिषद में सुधार के लिए धार्मिक संबद्धता जैसे नए मापदंडों को पेश करने के प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की स्थापित प्रथा के विपरीत हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हाल ही में कहा था कि एक इस्लामी देश को परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए, जबकि इस्लामिक सहयोग संगठन ने इस्लामिक उम्मा के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था। लोकसभा की प्रवर समिति नए आयकर विधेयक 2025 पर नई दिल्ली के संसद भवन में बैठक कर रही है। 31 सदस्यीय समिति का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं। समिति संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के बूथ स्तरीय एजेंटों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। बिहार के 10 विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 280 बूथ स्तरीय एजेंट 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधु और डॉ विवेक जोशी ने कार्यक्रम के दौरान एजेंटों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में मदद करेगा। एजेंटों को कानूनी ढांचे के अनुसार उनकी नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों का अवलोकन कराया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम ने उन्हें चुनाव प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं, मतदाता सूची की तैयारी, अद्यतन और संशोधन तथा संबंधित प्रपत्र और प्रारूप शामिल है। 243 सदस्य बिहार विधानसभा के लिए चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। समाचार कक्ष से राजेश मीणा।
दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 9वां स्थान दिया गया है। इस हवाई अड्डे ने एयरलाइन संचालन के विस्तार, उन्नत बुनियादी ढांचे और बेहतर वैश्विक संपर्क के कारण 9वां स्थान हासिल किया है। भारत ने रेल संचालन की आज 172वीं वर्षगांठ है। 16 अप्रैल 1853 को देश में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उस ऐतिहासिक क्षण को याद किया जब रेलगाड़ी महाराष्ट्र के बोरी बंदर से ठाणे के लिए रवाना हुई थी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। सार्वजनिक खरीद के लिए भारत के सबसे बड़े ई मार्केट प्लेस जेम ने वित्त वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य, जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसियों को कवर करते हुए 1,30,000 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को बीमा की सुविधा प्रदान की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जेम ने उसी वित्तीय वर्ष में 10 लाख जनशक्ति संसाधनों को भी काम पर रखा है। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 109 अंक गिरकर 76,626 पर आ गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक गिरकर 23,303 पर कारोबार कर रहा था। जम्मू कश्मीर में 3 महीने से अधिक समय के बाद ऐतिहासिक मुगल रोड को कल यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया। 84 किलोमीटर लंबा ये मार्ग भारी बर्फबारी के कारण बंद था। ये मार्ग उत्तरी कश्मीर के शोपियां जिले को जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ से जोड़ता है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान राजस्थान और गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया है। लू चलने की चेतावनी दी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 18 अप्रैल को मूसलाधार बारिश हो सकती है।
जो सीवियर हीट वेव है अभी राजस्थान में चल रहा है और सबसे ज्यादा तापमान जो बाहर में रहे 45.5 डिग्री दर्ज किया गया और यहाँ सीवियर हीट वेव रेड वार्निंग है 16-17 और धीरे धीरे 18-19 को कम होगा और उसी के साथ साथ पूर्व राजस्थान में भी हीट वेव का अलर्ट इश्यू किया गया है 3 से 4 दिन 16 से 18 और 19 तक। और गुजरात में जो सबसे ज्यादा तापमान है कांडला है 44 डिग्री दर्ज किया गया, यहाँ भी हीट वेव आइसोलेटेड पर है। दिल्ली का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और कल परसों 40 भी टच हो सकता है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश का निर्यात पिछले वित्त वर्ष में 5.5% की वृद्धि दर्ज करता हुआ रिकॉर्ड 821 अरब डॉलर के आसपास पहुंचा। अमेरिका ने बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच चीन के उत्पादों पर 245% जवाबी शुल्क लगाया। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में भूमि सौदे से जुड़े मामले में लगातार 2रे दिन रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।